ఓం శాంతి. గుడ్ ఈవినింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఓం శాంతి ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. తో ఇస్ సత్ర మే ఆప్ సబ్కా స్వాగత్ హై. సబ్సే పహలే మే అప్నే వక్తాగణ్ ఆర్ గెస్ట్ స్పీకర్ కు డైస్ పర్ ఆమంత్రణ కర్నా చాతి హూం. ఐ ఇన్వైట్ డాక్టర్ విజయ్ బాలకృష్ణ మెహతా టు ద స్టేజ్. జహాం పర్ భి హూం తో కృపయా స్టేజ్ పర్ ఆకర్ అప్నా స్థాన్ గ్రహణ్ కరే. బికే అజయ్ భాయ్, శ్రీ ఎస్ ఇంగర్ సోల్ జీ అండ్ సిస్టర్ బికే వినీతా, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसर्चर्स का अनेकानेक रोल्स होते हैं, तो उसी एक महत्वपूर्ण रोल में रिसर्चर्स एज चेंज एजेंट, ए न्यू पर्सपेक्टिव. तो रिसर्चर्स क्या चेंज ला सकते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है होना ही है. चेंज इज इनएविटेबल. सो रिसर्च फील्ड में हम क्या चेंज ला सकते हैं, कहां से ये चेंज शुरू होता है और ये चेंज या परिवर्तन कहां तक अपना प्रभाव डालता है, तो ये हमारे स्पीकर से हम सुनेंगे. तो इस सत्र को प्रारंभ करने से पहले हम एक मिनट परमात्मा की याद में रहेंगे. अपनी बहनों से निवेदन करती हूँ, शशि बहन और दूसरी बहनों से, अपने गेस्ट को फूलों और बैडजेस से स्वागत करें। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार तो हम अतिथि गण के जो स्वागत करते हैं फूलों से, ताकि फूलों का जो सुगंध है, सुंदरता है, हमारे जीवन में निखर आए, हमारे जीवन में वो रूहानियत आ जाए और यही रूहानियत हम सबको फैलाए। तो हम अपने गेस्ट का स्वागत करते हैं, डॉक्टर विजय बाल कृष्ण मेहता, ब्रदर अजय भाई, श्री सिंगर सोल और सिस्टर वनिता। करतल ध्वनि से हम उनका हृदय से स्वागत करें, तालियां बजाएं। Researchers as change agent, new perspective. तो क्या चेंज हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं as a researcher or any profession? तो हम देखते हैं कि दुनिया में हम सब कुछ पाया, सब कुछ हमने खरीदा, सब कुछ हमारे जीवन में है, लेकिन अंत में एक स्टेज पर हम ऐसे पहुंच जाते जहां पर हमें लगता है कि सब कुछ होते हुए, सब कुछ जानते हुए भी कुछ मिसिंग लिंक है, समथिंग मिसिंग इन आवर लाइफ, वेयर दैट सेटिस्फैक्शन, वो जो संतुष्टता है, वो जो अंदर की तृप्ति है, कंटेंटमेंट है, उसकी बहुत कमी है। तो व्हाट इज दैट मिसिंग लिंक? तो एज ए रिसर्चर, क्योंकि हम हर फील्ड में रिसर्च का काम देखते हैं, तो वी फाइंड दैट देयर इज समथिंग मिसिंग, कुछ न कुछ मिसिंग है, जो रिसर्च वर्क जो है आम जनता तक रिजल्ट पहुंचते ही हम देखते हैं कि रिजल्ट में देयर इज समथिंग विच इज मिसिंग एंड दैट चेंज हैज टू बी ब्रॉट अबाउट बाय द रिसर्चर्स। क्योंकि रिसर्च जो है इट इज द फाउंडेशन फॉर एनी रिजल्ट विच इज थ्रोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। So coming to the topic, researchers as change agent, a new perspective. So today we will listen to our eminent speakers. So first I would request our brother Dr. Vijay Bal Krishna Mehta to share on this topic, to put forth his views on his topic. तो डॉक्टर मेहता, विजय बाल कृष्ण मेहता जी, एक्स वाइस चांसलर, डॉक्टर बीएस कोंकण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दापोली महाराष्ट्र के हैं, वे एमएससी एग्रीकल्चर और पीएचडी किए हैं और वास्ट फील्ड में उनका रिसर्च इन एग्रीकल्चर चला है और अनेक थीसिस भी प्रेजेंट किए हैं। और इस फील्ड में जो रिसर्च एज ए चेंज इज एजेंट, तो वो अपने क्या व्यूज प्रकट करना चाहते हैं, क्या शेयर करना चाहते हैं, क्या अपना पर्सनल व्यूज है, हम उनसे सुनेंगे। डॉक्टर विजय बाल कृष्ण मेहता जी।
ओम शांति। Respected B.K. Ajay, Sri S. Ingersoll, B.K. Vanita, B.K. Shashiben, B.K. Chaya, and brothers and sisters. Just now the subject has been introduced. What is needed in a research? that we'll have to discuss here. So first we'll have to see what are the problems and how can this be solved. As you know, the modern world is facing various challenges, and mostly because of the non-sustainable use of these natural resources. We have major concern about the securities in energy, environment, food and nutrition, and affordable health care and habitats. And the research in sustainability is the priority agenda of the modern world. Of course, the climate change is another topic where the governments have been engaged and the international negotiations are becoming very intense. Now, in order to solve these problems or finding out solution to the problems, researchers need certain competencies, certain skills, and that we will mostly discuss here. Because now the problems are not of one nation. They are international. Many countries are involved in this problem. Say the example of, say, the recent outbreak of Ebola. So Ebola was emerged at Kilimanjaro Hills in Zambia, but it has now spread all over the world. So that means the problems have no geographical limit, no political boundary. These are the problems of many nations. And henceforth, the research also needs to be done cooperatively. The researchers from all over countries, they should come together and solve these problems. That is the necessity of the today. Now, little bit I will divert from research to education, because education is a good, or the quality education with values is very necessary to prepare a good researcher. So what is the position in the world about the education? Yes, the World Education Council has published one report on education in 21st century. And in that report it has been stated that the education in 21st century will be based on four pillars. And the pillars are, first one is learning to know. Second is learning to do, which if he is MBBS, he can practice medicine. Then third is learning to cooperate. This is also important. And the fourth important is learning to be. Learning to be means to be human being. Now our present educational system is giving emphasis on only first two pillars, but there is no emphasis on cooperation or the human values. If you see our ancient system, our education system was based on all these four pillars, but we forgot all these things and we are giving emphasis on the first two pillars. And I think the spirituality, or some courses on spirituality, needs to be introduced in, at say, primary level or high school level, in order to cope up or in order to have the third and fourth pillar, that is cooperation and to be human being. Now coming back to the cooperation, I was telling you about the research needs to be done cooperatively, because it needs to be done, there should be faculty discipline or inter-faculty work needs to be done. And I will tell you one example, good example of this. You may be knowing that about the Higgs boson or the God's particle project. So do you know, more than 8,000 scientists were working in that project, and they were from 113 countries and 610 institutions from all over the world. Recently, one software was developed at Bangalore for Australia. And in this project, the software developer was from China. He worked under the project leader from Korea. The software engineer was from India. The hardware specialist was from America. And the communication specialist was from Germany. So they all worked together just like a one family and they forgot their culture from which they come and the language they speak. So like this, the researchers should have to do the work to find out solutions to these future problems or the problems of even sustainability. If you see the ancient work, ancient invention, the great inventions have been occurred on the basis of the phenomena, observations of the phenomenon in the nature. Say for example, the apples were falling down even before the Newton saw them. But it was only to Newton who realized the concept of gravity. Or another example is about, say, a Pasteur who discovered the microorganism just on the basis of some observations in his father's tannery. So how could these scientists find out the mysteries of nature? What are the qualities in them? They used to have certain skills, competencies, and those are they see, they think, they analyze and observe. This is the thing. Because once your mind is conditioned, then you cannot think like that, you cannot find the ways of nature or other things also. Because your mind is conditioned, there is no creativity. Now see the present education system. In present education system, the training is given just to follow the straight path of thought sequences. There is no creativity, there is no originality in thinking. I will share with you an anecdote. I was taking interview of some candidates and I asked them a very simple question to them. What is the next number in the sequence? 2, 5, 10, 17. What is the next number? So very few could answer that question, but they took a very long time to answer that question. Then I asked the same question to my son, that time of 10 years old, and he immediately answered 26. I was also astonished and surprised. How could you do that? Because I was also thinking of the decipher N2 plus 1. And he immediately answered that question. Then I asked him, how could I arrive at that question so quickly? Then he said, it's very simple. You were adding the odd numbers to the previous one, that is 2, 3, 5, 7, 9, like that. That means he was very innocent. But I tell you further, he did his B.Tech from IIT, did Ph.D. in state. And now at this stage, if I ask the same question to you at the age of 30, I am sure and I am also fear that he will again think like us, like a decipher N2 plus 1. He must have lost the originality or creative thinking. I think so. And researcher has to have this creativity and this original thinking that is most necessary for it. He should think out of the box. It is very necessary. For that, the originality is very necessary. And as Einstein has said, that the question cannot be solved in which the question has been created. The way by which it is created, if you are following the same thing, then we are again creating another question or another problem. And therefore, these skills or these competencies are required in research. Let us take an example of Einstein. When Einstein died, he had received no formal education. But when he died, 193 patents were at his credit. He invented what not? He invented light bulb, electric pen, phonograph, then motion movie camera. How could he do this? And Einstein, this Edison has given the answer of this question that it is because of curiosity. Because curiosity provides some instinct. And as Einstein has said, one who is not curious about the things about him, he is as good as dead, a snuff candle. And therefore, the researcher must have this curiosity. There should be inspirational effort. It should come from the bottom of heart, the inspirational effort. Now, I will give you some examples of inspirational effort. You know, I think, Leonardo da Vinci. He is very famous for his painting in Vatican Museum. But do you know, basically he was engineer. And the first submarine in the world was designed by him. The Harold Varmus, he received Nobel in virology. But do you know, he was doing PhD in English literature. He was not doing PhD in virology or pathology. The Venki Ramakrishnan, he was physicist and he got Nobel in chemistry. Our Raman, he was working as assistant auditor general. Einstein was working as clerk in Switzerland. So how could they invented these discoveries, they have made these discoveries? Because of this inspirational effort. See, research can be done by anybody. It is not necessary that you should be highly qualified in that subject. Or it is not necessary you should do the research in which you have taken a PhD degree or you have done a postdoctoral research work. It is not like that. And then what is necessary now, or the moral is, the researchers, they should allow themselves to minder and boost the creative instinct. And I think here, the meditation can play a very important role for the researchers. Just for the mindering. Now, we should give value to the science. Researchers have some value. Researchers should give value to the science. Unless there is no value, then he cannot do the research of that quality. I remember one story of Raman. When he received the Bharat Ratna Award, he did not attend that function. But he wrote to the president that the PhD thesis of one of my students is to be submitted in time and I have to be with him, and therefore I regret I am not able or I am unable to attend that function. So that means he gave value to the science rather than the pomp of this glittering ceremony. So researchers should be like this. Now here I again remember one story. I will share it with you too, but it was told me to buy one industrial age from Gujarat. That story is like this. A group of Persian wanted to migrate to Gujarat, and they went to the king of that region. The king wanted to say no. So he brought a glass full of milk and show them, and symbolically told them that there is no space for you in our region or in your state. Then one of the senior person from that Persian group, he added some sugar in it and symbolically told him that we will dissolve in your region like this sugar and add value to the region. So that industrialist again said to me, now see, you researchers should be like this sugar. You should occupy the important space in this world where there are so much problems and add value to the society. Now there is the conversion of various sciences or technologies. Say for example this ICT, information and communication technology is there, bioinformatics is there. Now the nanotechnology is emerging fast. Now all these sciences, they are discovering or they are coming together and being a very good work. For example, I will tell you, now the nanorobot has been prepared. So when it is injected in the body, it goes straight to the affected, not only part, to the affected cell in your body and delivers the content there. And then it dissolves itself automatically because it is DNA based. So now in this world, there is a convergence of all the technologies, and mostly the convergence is between or convergence is among this information technology, this biotechnology, this nanotechnology, and one more, that is ecology. So that is there. But I think there should be a convergence of 5 technologies, and the 5th one, I suggest, it should be spirituality. So I think I thank you here. I thank the organizers for giving me a opportunity to share some of my views with you. Thank you.
Thank you very much, sir. It was very practical. So jaise ki the topic hai, to aapne sunaya ki learning to know, learning to do, and learning to cooperate and learning to be. So most important is learning to cooperate and learning to be. So what researchers stand for is researcher mana hi, it is a kind of creativity. तो हमारे अंदर जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो उसको बाहर, जितना हम बाहर निकालेंगे तो उतना वो प्रयोग में आएगा. एंड क्रिएटिविटी ब्रिंग्स मोर ऑफ क्यूरियोसिटी, एंड क्यूरियोसिटी ब्रिंग्स मोर ऑफ इंस्टिंक्ट टू डू मोर, और करे और करे. सो क्वालिफिकेशन इज नॉट नेसेसरी, बट वी नीड टू हैव द स्पिरिट टू डू समथिंग न्यू, something very creative. And meditation is so important to boost this creative instinct. So it was so practical and so beautiful examples and stories that you had given. So I thank you very much from the heart. Heartful thanks to you for sharing on this topic. So our next speaker who is going to share on this topic is Brother B.K. Ajay. So, who is practicing Raj Yoga meditation for the past 20 years, who is a core group member, and he is also doing his PhD in neurophysiology in IMHANS, Bangalore, a very good research scholar, because I have been associated or seeing him for a long time, and what I found is He has a matured instinct in him which brings out more of creativity. So jo karte hain, that creativity comes out spontaneously from him, and he has that maturity to put forth things in a very simple and a very, very, very beautiful way. So now I invite Brother Ajay to share with us on this topic of today. Thank you.
आज का ये जो सेशन है, इसका बहुत सुंदर एक प्रीएम्बल विजय जी ने हम सबके सामने रखा, और छह बहन बहुत प्यार से इंट्रोड्यूस कर रही थी। वास्तव में ये सेशन आपका सेशन है, रिसर्चर्स एज चेंज एजेंट्स। तो हम आपका, आपकी जो विशेषताएं, आपकी जो खूबियां हैं, योर स्पेशलिटीज, I'll be sharing it back with you. And the purpose of doing that, there is a purpose of doing that. Why should I share something that you do very well already? You know, मैं वो चीज आपको क्यों सुनाऊं जो आप अच्छा वैसे ही करते हैं? इसका कुछ कारण है। और हो सकता है आज का ये जो सेशन है आपको यूजफुल लगे। मुझे लगता है हमें ये यूज करने की काफी जरूरत है। विजय जी अपने बेटे के बारे में सुना रहे थे, और मेरा आज का सेशन देखा जाए तो उस एक एग्जाम्पल से बहुत लिंक्ड है। तो रिसर्चर्स इज चेंज एजेंट्स, अ न्यू पर्सपेक्टिव। इसमें अगर हम देखें तो इस कॉन्फ्रेंस का जो थीम है वो है फॉस्टरिंग रिसर्च टू बिल्ड अ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, अ होलिस्टिक अप्रोच। तो ये वैल्यू बेस्ड सोसाइटी जो हम कहते हैं, ये इस तरह का एक सोसाइटी है जहां बहुत लोगों ने इसकी कल्पना की है, बहुत सोचा है इसके बारे में, जहां सब खुशहाली हो, भाई सब एनवायरमेंटल पोल्यूशन न हो, क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट ना हो, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो, जो भी टेक्नोलॉजीज हो वो उस तरह से हो जो सबके काम आए। डिजाइन के एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं जो बहुत सुंदर रीति से हम कुछ बनाएं जो सबको काम आए लेकिन किसी तरह की हानि न पहुंचाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लर्निंग टू बी वाली बात कही कि हम आपस में प्यार से रह पाएं, अपने आप को उस तरह से एक्सप्रेस कर पाएं, इसकी बहुत जरूरत है। तो इस तरह का समाज अगर हमें निर्माण करना है तो ये एक पर्सपेक्टिव, ये स्पार्क का कॉन्फ्रेंस हमारे सामने रख रहा है। लेकिन इसमें नया क्या है, नया पर्सपेक्टिव क्या है? और क्योंकि आपने वैल्यूज के बारे में, भाई साहब ने भी जिक्र किया, कल भी आपने सुना कि वैल्यूज रिसर्चर्स में क्या होने चाहिए, लेकिन मेरा कुछ उल्टा पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि हम में जो रिसर्च वैल्यूज है उसे फॉस्टर करने की, उसे नर्चर करने की, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो मैं ये आपके सामने रखना चाहूंगा, फॉस्टरिंग रिसर्च वैल्यूज टू ब्रिंग अबाउट होलिस्टिक चेंज। जो हमारे रिसर्च वैल्यूज ऑलरेडी हैं उसे होलिस्टिक यानी सर्वांगीण विकास में किस तरह से यूज करें, ये मैं आपके सामने निवेदन रखना चाहूंगा। और अगर एक लाइन में ये पूरे प्रेजेंटेशन का समरी अगर आप चाहते हैं तो वो ये है, रिसर्चर्स आर एंडाउड विद वैल्यूज दैट कैन ब्रिंग अबाउट होलिस्टिक चेंज। वी ऑलरेडी हैव देम, हमें कहीं और से ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप जो ऑलरेडी कर रहे हैं, हम आप जो मिलके रिसर्च के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हम में ये क्षमताएं ऑलरेडी हैं, पहले से ही हैं। इसे हम किस तरह से आगे बढ़ाएं उसे देखने की जरूरत है। और दूसरी बात, बच्चों के साथ भी ये है जो विजय जी ने हम सबके सामने रखा कि इवन चिल्ड्रन हैव देम, आवर जॉब इज टू नर्चर दीज वैल्यूज एंड मेक द वर्ल्ड अ बेटर। ये हमारा काम है, ये सब में है, बच्चों में है, रिसर्च जो नियमित रीति से करते हैं उनमें भी है, और इसे बढ़ाना, सारे समाज में फैलाना ये हमारा कर्तव्य है। तो ये समरी है पूरे प्रेजेंटेशन का। अगर समय की पाबंदी हो, बहन जी बोले रुक जाओ, तो आप ये याद रख लेना तो काफी होगा। आप इनका चेहरा देखिए, एक इस बच्चे में वो वंडर, वो एक इनोसेंस, वो जानने की एक ललक जो है चेहरे पे दिखती है। और ये हमारा एक फंडामेंटल चीज है, पैदा होते ही आता है, हमें किसी से देने कोई लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सुंदर चीज है ये, एक नेचुरल क्यूरियोसिटी टू नो। और एक चेंज एजेंट में ये बहुत जरूरी चीज है। तो चेंज एजेंट अगर कोई परिवर्तन लाना चाहता है उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। एक तो कुछ करने का, कुछ कोऑपरेट, कुछ बदलने का, कुछ सेवा भाव, इसकी बहुत जरूरत है। अन्यथा नेगेटिव चेंज भी लाते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव चेंज की, मूल्याधारित समाज की जो बात है उसमें सर्विस ओरिएंटेशन की बात है। आज जरूरत लैक्यूना क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ है, उसे जानना, एक सॉल्यूशन माइंडसेट, किस तरह से हम इसे सॉल्व करें, इसका हम कुछ हल निकालें, उसको जानने की जरूरत। प्राप्तियां क्या होंगी उसको सामने रखना। और आज सुबह आपने सुना होगा न्यूरो लीडरशिप के बारे में बाला भाई बता रहे थे कि हमें सर्टेनिटी पसंद है, लेकिन रिसर्चर की एक खूबी होती है कि हमें अनसर्टेनिटी पसंद है। हमें क्रिस्प आंसर जब मिलते हैं तो हमें लगता है दाल में कुछ काला तो नहीं है, कुछ और देखना चाहिए, कुछ और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो गोइंग बियॉन्ड द अनकंफर्टेबल रीजन टू से दिस इज वेयर वी वांट टू गो, एक विजन बेस्ड अप्रोच इसकी जरूरत है। और वो जो मुश्किल वाला रास्ता है उसे सहज बनाना, ये इस चेंज एजेंट का कर्तव्य है। अगर हमें चेंज लाना है और एक सकारात्मक चेंज लाने की जरूरत है, अगर हमें दिखता है, तो लोगों को वो चेंज बनाना इजी कर देना, ये हमारा काम है। और रिसर्चर के रीति में अगर देखें तो रिसर्चर में ये वैल्यूज हैं, आप सब में ये वैल्यूज हैं, जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। आज क्यूरियोसिटी के बारे में भाई साहब ने कई बार सुनाया, क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी किसी ने कह दिया और हमने सत्वजन महाराज कह दिया, ये नहीं। जस्ट टू से येस टू वॉट एवर अदर्स से इज नॉट द स्टेलर क्वालिटी ऑफ अ रिसर्चर। इट इज टू थिंक ओरिजिनली, इट इज टू थिंक डीप, इट इज टू पॉन्डर and to figure out what is it that would make things, how can we make it more rigorous, how can we make it more accurate, and for that we need discipline. Hum karmath hoke jo karya karna hai wo systematically kare, deeply kare aur end tak kare, perseverance humme ho, aur ek contribution ke liye kare. Ek hota hai ki hum interest se kare, lekin ek mulyadharit samaj ke liye agar hame kuch karna hai to ek seva bhav se karne mein bahut kuch fark pad jata hai. काम वही होता है ना, कहते हैं there was someone who was building, laying stones as a brick mason and someone was building a cathedral. बात वही है, व्यक्ति काम वही कर रहा होता है, लेकिन हमारे मन में जो सोच होती है उससे बहुत फर्क पड़ता है। और रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो शायद बहुत लोग समझते नहीं है आम दुनिया में, कि रिसर्चर्स बाय नेचर हम्बल होते हैं। आपको लगता होगा कहां हम तो इतना ईगो प्रॉब्लम देखते हैं, लेकिन वास्तव में रिसर्च की एक बुनियाद है कि हमें पता नहीं है, है ना। जब पी वैल्यू इज लेस देन 0.05 बोलते हैं तो भी उसमें अनसर्टेनिटी बनी होती है। भाई हम आज तक हमने जितना कुछ रिसर्च किया उसका फल ये हो सकता है, इतना कहने का क्षमता एक रिसर्चर रखता है, बाकी यही सत्य है ये कहने की क्षमता नहीं रखता या नहीं रखती। तो ह्यूमिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रिसर्च में, जो कि हमें बहुत मदद करता है। और जो अल्टीमेट गोल अगर हम रिसर्च के हिसाब से देखें वो है सत्य, व्हाट इज ट्रूथ। और ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, क्योंकि एक अल्टीमेट टॉपिक मान लें, क्वेस्ट फॉर नॉलेज जो है एक बहुत बड़ी चीज है, और सत्य की खोज कि हमें सत्य चाहिए, ये बहुत समय से लोगों ने रखा हुआ है। उसके लिए कुछ इस तरह से हमें कार्य करने की जरूरत है, इमर्सिव लर्निंग, यानी उसमें जुट जाना पूरी तरह से। ये नहीं कि मेरा शर्ट खराब हो जाएगा हम कैसे ये काम करें, नहीं। रिसर्च जब व्यक्ति तल्लीन हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं, तब वो काम जो है कुछ सुंदर, कुछ एक यूजफुल रीति से सबके सामने आता है। तो एक फुल इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है कि हमें जानना है ये कैसा है, भले ये पेंट जो है टेस्ट कैसा भी हो, लेकिन उसको ये नहीं है कि ये खराब है ये क्या है, नहीं, मुझे वो पता करना है, एक अंदर से वो एक चीज है, और ये हमें नर्चर करने की जरूरत है। आप किसी बड़े को ऐसे नहीं देखेंगे कि जाके पेंट ब्रश चबा रहे हैं, वो कहेंगे कुछ हो गया इनको, है ना। लेकिन एक फंडामेंटल क्यूरियोसिटी हम सब में है, इमर्सिव लर्निंग, क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंड, टू नो फुली एंड टू नो इन डेप्थ, दिस इज वॉट वी वॉन्ट। The second thing is to ask questions. आप कभी बच्चों के सामने रहे हो, हम मेजोरिटी रहे हुए हैं, तो उनमें ये जानने की बहुत बहुत एक इच्छा इच्छा रहती है कि बताओ ये क्या है, वो क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, वो कैसे है, ये जानना उनका निरंतर प्रश्न चलता रहता है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत करके इसको रोक दिया जाता है कि इतना नहीं पूछा करो, है ना, चुप हो जाओ, बस ऐसे ही होता है। लेकिन नहीं, इसे एक नर्चर करने की जरूरत है। आखिर ऐसा क्यों, जो भाई साहब बता रहे थे, न्यूटन ही क्यों एप्पल के बारे में सोच रहे थे, वास्तव में हर बच्चा सोचता है, लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, उसको कहा जाता है चुप हो जाओ, बहुत पूछ लिया, बस ऐसे ही गिरता है, ऐसे कहा जाता है ना। तो हमें ये करने की जरूरत है, नहीं पूछिए, और पूछने का एक चैनल देने की जरूरत है। तो कार्ल सेगन, जो बहुत फेमस कॉस्मोस के डायरेक्टर रहे, एक साइंस पॉपुलराइजर थे, उन्होंने कहा कि बच्चों के सिवाय और कोई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो रियली इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उसके बारे में पूछा करते हैं। मेजोरिटी जो है छोटी छोटी बातों में पूरा करियर लगा देते हैं, लेकिन जो बुनियादी बातें हैं, सत्य क्या है, हम हैं कौन, हम आए कहां से, हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे ये सब जान रहे हैं, ये जीवन क्या है, इन बातों को जानना ये भी एक रिसर्च क्वेश्चन है, और ये हम सबके लिए लागू है, सारे समाज के लिए लागू है। और इस खोज में जो हमें पता नहीं है उसको जानने की एक इच्छा, उत्कंठा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों में हम देखते हैं कोई भी चीज दे दो, खोल के, टटोल के, पकड़ के, मोड़ के, सब कैसे भी करके जानने की कोशिश करते हैं। और ये एक सेंस ऑफ वंडर, एक सेंस ऑफ डिस्कवरी है कि हम हर चीज में कुछ नया पता कर रहे हैं, ये उनकी विशेषता होती है। लेकिन शायद दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट अननोन जो है, आप उसके बारे में आपने भी कई बार सोचा होगा, वो ईश्वर है। तो कहा जाता है गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर ही सत्य है। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत फंडामेंटल स्टेटमेंट है। लेकिन अगर हम देखें तो ट्रूथ के बारे में, गॉड के बारे में बहुत बहुत विचारधाराएं हैं, है ना। और अगर हम देखा जाए तो हम जो भी यहां बैठे हैं या दुनिया का हर व्यक्ति किसी और धर्म के मान्यता में नास्तिक है, है ना। वी आर ऑल एथिस्ट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन एल्स, सम अदर रिलीजन। इट्स अ वेरी फनी थिंग, वी से गॉड इज ट्रूथ And we all have an opinion about God, we have a belief system about God, but we are not very sure. But we are very sure about our God. You know, your God is debatable, you know, but my God is sure. So this is a challenging thing. और इसीलिए researcher को जो perspective है, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, आप इसमें देखें आपका क्या विचार है। Researcher का विचार है कि truth is God, कि सत्य God है, हम सत्य की खोज में हैं और जो उससे aligned है वो God है, हम उसके लिए अपना जीवन देते हैं, उसके लिए हम समर्पण होते हैं, हम एक विचारधारा को लेके उसमें समर्पण नहीं होते, हम सत्य को लेके उसमें समर्पण होते हैं, उसमें जो भी जानना चाहें वो हमारा योगदान होता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग की इसमें बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारा बचपन से जो कल्टिवेशन है, जो बच्चे तो सब कुछ पूछते हैं, सब कुछ क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उनको जो सिखाया जाता है वो ये है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, ये ऐसे ही होता है, आप ये मान लिया करो, है ना, डोंट क्वेश्चन सो मच, प्लीज यू नो कीप क्वाइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत जरूरत है। व्हाट इज द एविडेंस फॉर व्हाट वी आर सेइंग, हम जो बोल रहे हैं उसका बेसिस क्या है, उसका फंडामेंटल क्या है। और एक ऑनेस्ट सिंसियर अप्रोच, किसी बच्चे को आप बता दो कि आप जाके ये पता करो, ये आप फील्ड में जाओ, इस तितली को देखो, वो जी जान लगा के देखेगा, बहुत रुचि से देखेगा, है ना। तो दैट इज अ क्वालिटी दैट चिल्ड्रन ऑलरेडी हैव, इफ वी गिव देम डायरेक्शन, इफ वी मोटिवेट देम, दे आर वेरी वेरी पैशनेट रिसर्चर्स। एंड आई थिंक दिस इज व्हाट वी आल्सो नीड टू डू, एंड आई थिंक रिसर्चर्स इन जनरल डू, बट द पॉइंट इज दिस इज व्हाट वी नीड टू शेयर अमंग द लार्जर कम्युनिटी, बिकॉज जो ग्लोबल चेंजेस के बारे में विजय जी बता रहे थे, everyone needs to think about it. It is not just a researcher in the ivory tower जो lab में बैठ के सोचता है, नहीं, हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि जो भाई साहब भी बता रहे थे, interdisciplinary thinking की बहुत जरूरत है, बहुत अलग अलग तरह के उत्तर मिल सकते हैं। और आप बच्चों को देखो तो कोई क्वेश्चन पूछो तो 50 आंसर तुरंत मिलेंगे, है ना, जैसे उनका बेटा तुरंत आंसर दे गया और सही दे गया। और लेकिन आंसर एक नहीं होता है, सत्य एक लेवल नहीं होता है। जैसे इस सेकंड में अगर देखो तो ये एक फिजिकल रियलिटी हमारे सामने है, एक एटॉमिक रियलिटी जो है वो विजय जी हमारे सामने रख रहे थे हिग्स बोसॉन वगैरह के बारे में, जहां की मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड पे एक एक इलेक्ट्रॉन हमारे सेल्स में घूम रहा है, वो भी एक रियलिटी है। एक एस्ट्रोनॉमिक लेवल पे देखो तो उसके सामने धरती क्या, हम क्या, ये जीवन क्या, बहुत कुछ भी नहीं है। तो वो एक दूसरा रियलिटी है। तो हम जिस पर्सपेक्टिव से देखते हैं उस लेवल पे ट्रूथ होता है। तो ट्रूथ हैज मेनी आंसर्स एंड वी नीड टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू यू नो चेक व्हाट इज इट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। एंड एट दैट लेवल, दिस लेवल ऑफ ओपननेस टू डिफरेंट आंसर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अलग अलग दृष्टिकोण से देखें, ये रिसर्चर की खूबी है, क्योंकि अलग अलग तरीके से हम एक ही प्रॉब्लम को देखते हैं। तो और दूसरे अलग अलग फील्ड से भी हम बातें जब करते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी डिस्कशन जब होती हैं, कंसेप्चुलाइज करते हैं, तब थ्योरी बनती है। आपने देखा होगा कई फील्ड्स में जो आंसर्स मिले हैं, भाई साहब जी बता रहे थे कि कोई फिजिसिस्ट है उसको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिल रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उस पॉइंट को यूज करके उसके बारे में विचार किया जा रहा है, उसके बारे में डेप्थ में सोचा जा रहा है। तो इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग से बहुत पावर है। तो हम एक ही जैसे हमने ये ही रिसर्च करना और ऐसे ही करना है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार उत्तर एक दूसरे तरफ से देखने में, अपने नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। तो ये एक बहुत यूजफुल चीज है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हम जो एग्जिस्टिंग सेटअप है उसी को वही सही है इस तरह से मानना उचित नहीं समझते हैं। वी आर विलिंग टू क्वेश्चन व्हाट एवर वी नो, वी आर विलिंग टू क्वेश्चन द स्टेटस को। अभी जो चल रहा है वही सत्य सदा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। जब गैलीलियो आए, कोपरनिकस आए, जब न्यूटन जब आए तो लोग कह रहे, जैसे लॉर्ड केल्विन कह रहे थे कि जो भी फिजिक्स होना था सब हो चुका, अब बस इसके डिटेल्स बाकी हैं। लेकिन फिर आइंस्टाइन 5 साल बाद आए, उन्होंने पूरा बदल दिया थ्योरी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि यू नो ट्रूथ इज फिक्स्ड एंड स्टैटिक, दैट इज नॉट रियली ट्रू। इट इज ऑलवेज इवॉल्विंग एंड वी आर प्रोग्रेसिवली ग्रोइंग फॉरवर्ड। तो टू बी विलिंग टू क्वेश्चन द स्टेटस को, एग्जिस्टेंस जो है वही शाश्वत सत्य है, ऐसा नहीं है, आगे टटोल के देखने की जरूरत है। और इसमें हिम्मत चाहिए, इसमें एक यू नो यू नीड टू बी ब्रेव टू बी एबल टू से नो व्हाट यू आर सेइंग विद ड्यू रिस्पेक्ट इज नॉट रियली एक्यूरेट, हियर इज अनदर ओपिनियन। ये बहन जी को आप सब पहचानते होंगे, इनका नाम मलाला है। उन्होंने कहा कि आप सब शायद पहचानते हो, पाकिस्तान से थी और छोटी बच्ची है, 16 साल की है, और विमेन्स एजुकेशन के लिए, वो एक काफी पेट्रियार्किकल सोसाइटी है। तो उनके पिताजी ने ये बात कही कि उनसे पूछा गया, उनके पिताजी जियाउद्दीन से, कि आप आखिर ये कैसे कर पाए कि एक छोटी बच्ची सारे विश्व में विमेन्स राइट और चाइल्ड एजुकेशन के बारे में इतना बोलबाला कर गई, इतना फेमस हो गई, आपने इस बच्चे को क्या मेंटरशिप दिया जो इनमें वो शक्ति आ गई? तो जियाउद्दीन जी ने ये कहा कि यू नो आई डिड नॉट, डोंट आस्क मी व्हाट आई डिड, आस्क मी व्हाट आई डिड नॉट डू, एंड व्हाट आई डिड नॉट डू इज आई डिड नॉट क्लिप हर विंग्स। मैंने उसको रोका नहीं, मैंने उसके क्रिएटिविटी को, उसके जो अंदर की जो एक बोलने की पैशन था, मैंने उसको रोका नहीं, उसको कर्टेल नहीं किया, ये मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। एक बहुत बड़ी बात है ये। तो रिसर्चर में ये इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम अपने आप को फुली ब्लॉसम करने दें, अपने अंदर की जो एक चाह है उसको पूरा प्रफुल्लित होने, फलीभूत होने के लिए चांस दें। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि आराम पसंदी रिसर्चर के लिए रिलेटेड नहीं है। रिसर्चर चैन से बैठे और कुछ ना, मतलब चलेगा, बस हो गया जी, हमको अपना प्रोफेसरशिप मिल गया, अब क्या करना है? नहीं, रिसर्चर माना कि उसको चाह है, एक लगन है, कोई कंफर्ट जोन नहीं है, निरंतर जो है अपने फील्ड में लगे रहना है। और वो डिसिप्लिन और रिगर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्यूरेट रिजल्ट हो, है ना, अपने पसंद का रिजल्ट हो नहीं, एक्यूरेट रिजल्ट हो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप बच्चों में देखो तो ये क्वालिटी बहुत सुंदर दिखती है। उसको बता दिया जाए कि इस तरह एक कैसल बनाना है तो वो बना देगा, और कितने बार भी वो गिरेगा फिर भी वो बना देगा, इसमें ये विशेषता होती है। दूसरी एक ये है कि एक फाइनल परफेक्शन का लक्ष्य नहीं है, प्रोग्रेस का लक्ष्य है। वी शुड प्रोग्रेस। हमारा लक्ष्य क्या है? हमें उन्नति को पाना है, हमें परफेक्ट हो जाना है, ये उसके बाद और कुछ नहीं है। रिसर्चर के मेंटालिटी में ये नहीं है। रिसर्चर मीन्स वॉट एवर आई एम, आई वॉन्ट टू गो फॉरवर्ड। दिस इज एन ओरिएंटेशन दैट इज देयर, एंड दैट नीड्स ह्यूमिलिटी। जो हमने रिसर्च किया उसमें आपने जो पेपर्स लिखे होंगे, आपने ये भी लिखा होगा कि दीज आर द लिमिटेशंस इन आर स्टडी, है ना, इसमें ये कमजोरियां, ये त्रुटियां बाकी हैं, इसे इस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। और आइंस्टाइन ने खूब कहा है कि ईगो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नॉलेज, है ना, अगर ज्ञान बहुत है तो नम्रता उसका एक प्रतीक है ना, उसका एक चिन्ह है। अगर नम्रता नहीं दिखता तो शायद है ना ज्ञानी का वो आभूषण नहीं है। तो दूसरी बात यह है कि आगे बढ़ने के लिए रिसर्चर सदा दूसरों को भी मदद करता है, हाउ टू हेल्प अदर पीपल टू मूव फॉरवर्ड, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। कोई भी स्टडी आप देख लें तो उसमें एंड में ये होता है कि भाई हमने ये सारा प्रयास किया, उसमें ये सब कुछ त्रुटियां रही, आगे रिसर्च के लिए ये चीजें की जा सकती हैं, ये आप सब अपने पेपर्स में लिखा करते हैं। और एक बहुत सुंदर स्टडी मैंने पहले एक बार इस तरह की सभा में शेयर किया है, ये जॉन हंटर नाम का एक यूएस में एजुकेशनिस्ट है, तो उन्होंने फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट्स का उन्होंने एक सेटअप बनाया, उसको वर्ल्ड पीस गेम बोलते हैं। तो ये बच्चे जो हैं उनको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है और बाकी सारा प्रॉब्लम्स वो चाहे वो क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वॉर टेररिज्म के प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे स्ट्रैटेजी निकालते हैं और वो उसका आंसर देते हैं। बहुत सुंदर गेम है, मैं उसके बारे में एक स्लाइड और दिखाऊंगा आगे। तो बच्चों में ये कुछ एक लक्ष्य मिल जाए तो उसके लिए जो चाहिए वो सारा करने में वो सक्षम रहते हैं। हमें ये सब क्वालिटीज हैं, हमें इन्हें नर्चर करने की जरूरत है। और समाज को वापस देना, एडवाइस करना, पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना, ये रिसर्चर का एक कर्तव्य है। तो ये जो जॉन हंटर का गेम था, उन्होंने वर्ल्ड पीस एंड अदर फोर्थ ग्रेड अचीवमेंट कि विश्व में शांति चाहिए तो चौथी कक्षा के बच्चे ये कर सकते हैं, उनके पास ओपिनियंस हैं, उनके पास स्ट्रैटेजीज हैं और बहुत सक्षम हैं। तो बच्चों में जो क्वालिटीज हैं, रिसर्चर्स में जो क्वालिटीज हैं, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो रिसर्चर वैल्यूज को एक्शन में लाने का मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल रखूंगा और शायद वो उससे इस प्रेजेंटेशन को संपन्न करूंगा। आपने इनका चित्र बहुत जगह देखा होगा शांतिवन परिसर में। ये इस इंस्टीट्यूशन के फाउंडर थे पिताश्री ब्रह्मा, और उनको हम ब्रह्मा बाबा प्यार से कहते हैं। तो वो जब उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, आप ये तो जानते होंगे, आप यहां आए हैं, तो ये एक संस्था मूल्याधारित समाज के लिए प्रयास कर रही है, इसके बारे में यू आर फेमिलियर विद ऑल दिस। सो हाउ डज दैट हैपन व्हेन अ सिंगल पर्सन विजन स्पैन्स नाउ ओवर 130 कंट्रीज, गोज यू नो विद मोर देन अ मिलियन पीपल हु हैव डेली स्टडीज इन स्पिरिचुअलिटी, टोटल लाइफस्टाइल चेंज, ऐसा कैसा होता है जब लाखों करोड़ों लोगों को इम्पैक्ट करने की एक व्यक्ति की सोच से बदल आ सकता है। और जबकि वो उस समय था जबकि विमेन्स इमेंसिपेशन की, आज भी मलाला की कहानी से आप जानते हैं कितना प्रॉब्लम्स है, वहां से आया और ये एक नारियों का एक विमेन लीडरशिप पे चलने वाला एक शायद एकमात्र इंस्टीट्यूशन है जो इतना विस्तार का, इतना बड़े पैमाने पे इतना सुंदर कर्तव्य कर रहा है, उसके टोटल लीडरशिप जो है विमेन है। इस तरह का एक सोच ला पाना 1936 में इट्स अ ह्यूज थिंग। सो व्हाट वाज इट दैट ही डिड, उनको एक सत्य के लिए लगन थी, खोज थी, व्हाट इज ट्रूथ, व्हाट इज लाइफ, हु एम आई, दिस इज वेरी स्टार्टेड। एंड आज जो आप शीलू बहन जी का क्लास सुनेंगे हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आपको वो बहुत प्यार आएगा, बहुत रिस्पेक्ट आएगा कि इस तरह की सोच हम में भी आए, कैसे ये सब हुआ। और ये सत्य की खोज ने इस महान आत्मा को आगे बढ़ाया, सेवा भाव ने, क्रिटिकल थिंकिंग ने। उस समय की जो सोच थी वो वल्लभचारी वैष्णव ब्राह्मण थे, उनका कुछ और सोच था, घर में पत्नी बच्चे आदि थे, तो एक वेरी डिफरेंट बिजनेसमैन थे, वेरी डिफरेंट लाइफस्टाइल। वहां से निकल के उनका सोच कितना परिवर्तन आया, आज का जो स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज आप सुबह सुनते हैं उसमें जो डेप्थ है, जो कमांड है, वो कहां से है, कितना अंतर है उनके बैकग्राउंड से। सो दैट डिजायर फॉर क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसिप्लिन वॉज वेरी हाई एंड द विलिंगनेस टू डू वॉट इट टेक्स, ब्रेवरी। समाज में उन्होंने बहुत कुछ देखा, बहुत चैलेंजेस फेस किए। शुरू में कराची से रिलोकेट करके माउंट आबू आए, उसकी बहुत लंबी कहानी है, आदिदेव नाम का एक किताब है, यहां आप लिटरेचर में वो लें, यू विल बी इंस्पायर्ड, यू विल रियली अप्रिशिएट व्हाट गोज बिहाइंड ऑल दिस। सो रिसर्च इन वैल्यूज, द वैल्यूज दैट वी हैव एज अ रिसर्चर आर ह्यूजली बेनिफिशियल। एंड इफ एनी पर्सन इवन विदाउट क्रेडेंशियल्स, फॉर्मल एजुकेशन, वो भी अगर इन वैल्यूज को यूज करते हैं तो वो होलिस्टिक चेंज ला सकते हैं। तो व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड चेंजेस, ये एक नारा आप यहां बार बार सुनेंगे और यही इस प्रेजेंटेशन का सार है कि हम में ये क्वालिटीज हैं, उसे हमें फिर से आगे कुछ अपॉर्चुनिटी देना है, उसे विकास और करने का, क्योंकि हम ये अपने डेली जॉब में ऑलरेडी यूज करते हैं, उसे फलीभूत होने का और मौका देना है, और उन पे विचार करना, उनको जीना, उनको सारे समाज में सबके साथ शेयर करना, ये मैं समझता हूं हमारी जिम्मेवारी है. तो व्हेन वी से रोल ऑफ रिसर्चर्स एज अ चेंज एजेंट, दिस इज द पॉइंट अबाउट द चेंज एजेंट. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर इट विद द लार्जर कम्युनिटी. इस तरह से हम देख सकते हैं सारी दुनिया को बदलने की, एक बेहतर समाज बनाने की, एक मूल्याधारित समाज बनाने की, वो एक इनोसेंट, वो एक पॉजिटिव, वो एक पावरफुल आउटलुक हम बनाए रख सकते हैं. ओम शांति.
थैंक यू वेरी मच अजय भाई. आपने बहुत ही सुंदर रीति से कहा कि होलिस्टिक रिसर्चर के जो अंदर के वैल्यूज हैं, तो वैल्यूज को बाहर, हमें अंदर जो है उसे बाहर विकास करने देना है. तो गोइंग बियॉन्ड अनकंफर्टेबल एरिया, जो मुश्किल है उसको सहज बनाना ही रिसर्चर का काम है. और जो हम रिसर्च का कार्य करते हैं, डू इट विथ योर ओरिजिनल थिंकिंग, पॉन्डर गोइंग टू द डेप्थ ऑफ दैट. तो जिन्होंने जो कहा, डोंट एक्सेप्ट इट ब्लाइंडली. एंड देन मुझे एक बहुत ही, अपने जो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा है, तो उनके बारे में उनकी जीवन कहानी सुनते पढ़ते हुए बहुत ही अच्छी बात मुझे जो लगी, जो अजय भाई ने भी आज पॉइंट आउट किया, जो हम करते हैं सिस्टमैटिकली करें और अंत तक करें, दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो फाउंडिंग फादर प्रजापिता ब्रह्मा जो दूसरों को शिक्षा दी, यही कहते थे कि छोटी छोटी, छोटे से काम हो या बड़े काम हो, कोई भी हो, लेकिन जब आपने स्टार्ट किया, शुरू किया है, तो आपको अंत तक करना है. तो आधा, हाफ डन, यू विल कैरी द सेम थॉट्स विथ यू, एंड देन द सेम थॉट्स विल बी कैरीड फॉरवर्ड थ्रू आउट योर लाइफ. तो जो करते हैं एज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रिसर्चर, लेट अस नो व्हाट थिंग्स आर इन डेप्थ. तो हम कौन है, कहां से आए और क्या करने आए हैं, ये बहुत ही बड़ी रिसर्च है अपने आप में. और रिसर्च जो है, अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखें, और अंत में हमने जो सुना, ज्ञान बहुत है लेकिन उसका चिन्ह है नम्रता. तो ह्यूमिलिटी इज द सिंबल ऑफ नॉलेजफुल पर्सन. सो द नेक्स्ट पार्ट दैट ही शेयर्ड विथ अस, विच आई हर्ड फ्रॉम the instruments of this organization, it could be our dadis or it could be the founding father Prajapita Brahma, be an instrument and allow others to move forward and progress. So it is a point that we all need to take away with us, sustain it, and then really put it into practice. Thank you very much Brother Ajay for sharing your views on this topic. So now I invite our esteemed guest, Brother S. Ingersoll, Scientist G, who is the Group Director, Systems Reliability Group, ISRO Propulsion Complex, Indian Space Research Organization, Mahendragiri, Tamil Nadu. So, positions that he held as Group Director, System Reliability Group, IPRC, Deputy Project Director, Quality Assurance Instrumentation, Semi-Cryogenic Project, Division Head, Quality Assurance Instrumentation Division, Deputy Division Head, Quality Assurance Instrumentation Division, Electrical Integration Engineer, Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum, Radar System Engineer, Vikram Sarabhai Space Center, Trivandrum, Associate Lecturer, Department of Electrical Engineering, Annamalai Polytechnic, and then areas of interest and specialization, development, testing and qualification of pressure, temperature transducers for aerospace application, vibration measurements on high speed rotational machinery, dynamic response testing of pressure transducers, special purpose instrumentation for cryogenic applications, reliability studies on field instrumentation. And he has also participated in many conferences and presented papers, carried out the ISRO RESPOND project work on reliability, modeling, analysis and prediction of absolute pressure transducers in collaboration with Reliability Engineering Center, IIT Kharagpur in December 2013. Participated in the National Science Congress, NSC 2010, at Trivandrum between 3-7 Jan 2010. Participated in Advanced Management Training Program for ISRO Scientists. Presented paper at ISRO level seminars and presented paper at national level seminar at IISc Bangalore July 2001 on application of pressure transducers for aerospace applications. So now we have our esteemed guests with us. I request him to share his views on today's topic. Brother Ingersoll.
Om Shanti. Respected Chairperson, Dr. Vinay Balakrishna, respected keynote speaker, Brother B.K. Ajay, respected coordinator, B.K. Chaya, respected professors, learned audience, ladies and gentlemen, brothers and sisters, wish you all a very good evening. I am going to talk about a very specific topic which is very dear to me, which I have felt that it is going to affect the humanity in a longer run, the sustainable nature. We must have a different thinking process right now with us. All of us, we have to think about it, because the data what we have at ISRO or even at International Space Agencies is very alarming on this issue. And so what change in thinking process we must have is the topic which I would like to discuss today. Anyway, we can say that these were the best of the times and these were the worst of the times. This was an opening line from Charles Dickens' novel. Yet it is happening today. We have evidence that we are degrading our environment and consuming resources at an alarming rate, which cannot be supportable at any point of time. The rivers and lakes which we used to praise gods, we have named our rivers and lakes, rivers and in the names of gods, but yet it is now a dump ground for untreated sewage and industrial waste. Pollution is up in the sky. In fact, in Bangalore, you cannot walk for 10 minutes on a road and then come back without any breathing problems. Not only in Bangalore, in many cities in India and other places also, it is the same thing. So, we have always, as human beings, we have always inherited two worlds. One is the natural world of plants, animals, soil, air and water that has been gifted to us by nature, that has preceded us 3.5 billion years ago. It is gifted to us. The other is the world of social institutions and artifacts that we have created for ourselves, using science and technology and political organizations. Both worlds are essential for us, but integrating them successfully for a sustainable future, we have lots of problems. Human beings of the past and human beings of today, there is a lot of difference. We are enabled human beings now, but what these enabled human beings do is something we have to think about. We had the muscle power earlier, but now we have the machine power, but now we have the power to extract, consume resources, produce waste, and modify world
in ways that threaten our continued existence. The muscle power to machine power to science and technology, growth in science and technology has added to greater rate of extraction, greater pollution, greater waste. That is what we are trying to do with this planet. What we don't know, we don't know. That is a major issue. Human beings doesn't know what they don't know. We are all called learned people, but we don't know what we don't know. And without that, without knowing that, we are embarking upon sweeping challenges, sweeping changes to our environment, without knowing fully the consequences. So, to ensure a sustainable future for ourselves and future generation, we need to understand something about how our world works, realize what we are doing to it, and we have to chart out an action plan on how to protect and improve it. That is very important. I'm not going to talk about the environmental science. We all know great about it. Knowing oneself and our true relation with nature can be brought about only by understanding the value of spirituality. Environmental science, relatively new science, is a highly interdisciplinary science, integrating natural sciences, social sciences, and humanities in a broad, holistic study of the world around us. We have a great planet Earth, one of the best planets in the solar system, where only has life has evolved and progressed, and we have a very hospitable planet so far, but things are going to change. We have clean air, fresh water, and fertile soil, which are regenerated endlessly and spontaneously by geological and biological cycles so far. But things are for a change. They are going to change. We have the biodiversity degradation. I'm not going to talk about that. We have loss of plants, animals, loss of microorganisms at an alarming rate. Environmental problems we are facing. Human population is growing at an alarming rate. We have 7.2 billion people now. 1/6 of the population are Indians. And the population growth is more in the developed countries. Particularly in the developed countries, the population doubles every 35 years. Most of that growth in the planet Earth is in the poorer countries, where already the resources and services are already stained by present population. Food shortage and famine are there. We have water and air pollution. In fact, when I was there at Trivandrum, and then later on in a place, small place called Nagarkoil in Kanyakumari district, I personally feel the change in the quality of water over the period of time, where the water which I used to take from my housing colony was much better than the mineral water or whatever it is. Now today, I am buying water from outside. That is the sort of change in the geological conditions. And the way in which we are making energy, how we are making energy is very important. And from where we get our energy is important. That is going to play a major role. We have to look at nature. That's what I want to give the key message to this August forum. We have to look into nature, how energy is made. How energy is made in the stars, we must see. It is made by nuclear fusion and not by nuclear fission. That is one major input we must have. We still don't have an working model of energy made by nuclear fusion, but that could only be the final solution for the needs of human beings in the energy front. We have issues related to global warming. You can see the photograph. The polar bears are standing in the last brinks, chunks of ice. After a few years, after a decade or so, they will not have any place to live. Also, many rare, because of the global warming, we have lots of problems going to come. We are going to face water crisis. We are going to have many many of the species, endangered species, they are directly or indirectly threatened by the human species, human activities. The effects of industrial pollution, I don't have to explain. We are producing hundreds of millions of tons of these dangerous materials, chemicals, and much of it is disposed in dangerous and irresponsible ways. The toxic waste and the other environmental ills of modern society have become a greater threat than infectious diseases for many of us in industrialist countries. The serious problems, unless they are understood with spiritual awareness, spiritual education, and a clear understanding of the environmental science and environmental education, we are in for real problems. Environmental sustainability, we have to look into the nature, we have to look into the biosphere. That is the only sustainable model which we have to take into our consideration. Biosphere is the only workable model which we have in front of us, but we don't look at us, look at it. If you think in terms of whatever nature makes, whether it is a ceramics or the human brain as a process computer, all of these fabulous and incredibly sophisticated products are constantly being innovated over time, but done in a way that has not endangered the sustainability of the planet for over 3.5 billion years. Look how nature works. That's all what we have to do. We don't have to think on our own. Look at nature only. But sustainability, of course, is not the business priority in today's materialistic world. It is very sad to see that it is not in the agenda of the companies who make various products in India or internationally. Companies, but still, they can align their operation of products and processes with ecology in a lasting way that is possible, provided we have a change in our thinking process. We have to think about the biosphere. It is to be the model which has to be followed. The present way of making products, what the business managers do today, is called a value chain. It is called a value chain. I have put a figure before you. The value chain simply represents the customer satisfaction. The end of the logistics, the end of the product, it is only depending on the customer satisfaction. That is what is called today's value chain. The value chain hopefully ends with a satisfied customer, but it doesn't take care of how it interacts with the biosphere. That we have failed to understand how we make products and how it interacts with the biosphere. That is very important. How the end of the life of the product, how it is going to interact with the biosphere, is very important for every organisms to survive on this planet Earth. It is high time to think beyond this materialistic chain with a spiritualist approach for a win-win partnership with nature. The value chain, as seen by production people, it ends with customer satisfaction. But the environmental scientists, they call it as take, make, waste. That's all. You take from the nature, make a product, then dump it as a waste. That's what we do. Take, make, waste system. That is what we are practicing today. This type of approach is never going to help us. So the present way of thinking to be changed, how much of waste we can make and can we afford to do that? Definitely, we cannot make waste beyond a certain capacity, and the more of the chemical waste and the industrial waste, we cannot go on carrying it. We say that about 95% of all resources extracted from the environment become waste within 6 minutes from 6 months from harvest. Whatever resources we take about from the earth, 95% of it becomes waste, and we don't know how to treat it or how to handle it. The pharmaceutical industry is a good example. 1 ton of saleable pills requires well over 150 tons of raw materials. The energy industry also is not different. They make also a lot of waste. The more recent development thinking, that is called the biomimicry process, that is what we have to adopt is a sophisticated offshoot of industrial ecological thinking. That's what we have to do. Instead of having a value chain based on the customer satisfaction, we must have a value based on the life cycle assessment. A life cycle assessment of the product has to be made. If you make a product, you make what is the impact of that product right from the raw material, the energy, what it is going to consume, and how it is going to be safely disposed. That is what is important. A life cycle assessment is the present day of thinking, and that is what we have to adopt now. I'm not going to go into greater detail how nature teaches through the biosphere. We have to understand. Can we learn from nature? Yes, we can learn from nature. Nature has got also a value cycle. Within nature's value cycle, only a select number of raw materials are constantly reused and never lose value. Nature uses only a select number of materials, even though it has in its kit around 88 to 90 materials, different materials. It uses only very selected number of materials, and it is constantly turned over and over without making any waste. That is what we have to understand. Managers who hope to improve productivity and improve growth can certainly learn a few things from nature. There are biospheric rules. The biosphere has got few rules, five golden rules. Just I will read out. The materials parsimony are the limited use of materials. We have to use materials in a limited way. We have to have power autonomy. The power autonomy of products and processes should be there so that they can function on renewable energy. That is very important. Value cycles. Recover and reincarnate materials. That is very, very important. You should not just throw away any product into a dump. You have to recover and reincarnate the product and make it into a new value-added product. It has to be sustainable product platforms has to be there. It has to be profitable also. Function over form. We are more now worried about form rather than the function of the product. We are thinking of fulfilling the customer's functional needs in ways that we should think to fulfill the functional needs rather than the form part of it. By way of implementing these biospheric rules, companies can reach a state of embedded sustainability where sustainable practice is internalized into the company's processes and products and vanishes as a managerial concern. We have to embed these sustainable practices into the business practices of today. Value cycle to be followed by the business fraternity. Anything has to be profitable, otherwise the business people will not follow it. So we have to embed this sustainability into the business practices. So we have to follow a value cycle which is in consonance with nature, which doesn't add. The waste management is one thing which we have failed to understand. That is what the human beings have failed to understand. So we have to practice the industrial thinking process have to change. We have to have a pre-cycling sort of a managerial mindset where we have to see the process of how the product is going to be made. We should have a pre-cycling instead of a post-analysis. Although the steps need not be strictly linear, most organizations will be more successful by following them in order through a single product or through the entire company. Now we have to have not only the researchers, the product designers, the material scientists, the power and energy managers, and long-term economic strategists should be as agents of change, should bring in new values for a long-term win together with nature and not for a short-term materialistic profit for profit-only motive. The nature's way is to use less of materials, less of energy, recycle the products, and even though we cannot call nature as not one is innovating, it is the most innovating thing which we have seen before us. We cannot deny the sophistication of nature's production. It creates on all scales, from the microscopic atom to the city-sized coral reef. It makes everything. Yet nature manufacture all its products using an incredibly small number of fundamental and by necessity non-toxic materials. Nature never makes toxic materials from its, it doesn't make any toxic materials. It uses only four gases, mostly even though it has got 88 to 90 numbers of materials, it uses only carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen as the basis for every living thing on earth. It uses only four gases as the fundamental materials. It adds a little sulfur and phosphorus and calcium, and together with these four gases, almost every living thing on this earth is made of 99% of the weight of every living thing is made of only these four gases and then three specialty materials, phosphorus, calcium and sulfur. So we have to learn from nature. We cannot have very exotic materials made from our industries, and rather we cannot dispose it. So materials chemistry, of course, it has created wonders, from metal to alloys to plastic polymers, but the proliferation has become too much of a good. Over 100,000 different synthetic chemicals, we don't know what is their interaction with us, what is the interaction with the biosphere, what is the risk we are facing because of this type of materials we are making. In contrast, nature has none of these problems, thanks largely to the principles of materials parsimony. So we have a short-sightedness. The human beings have the short-sightedness. We have not truly understood what we have to do. That is what has surprised me, surprised the researchers, our lack of understanding about the nature. Still, we have not truly understand and emulated nature. A final word, I would like to tell you that we should limit the materials what we are using, the development of chemicals what we have been developing, limit the various types of materials. Even though I may be called as not an innovative person, but we must see that in the longer run, how it is going to be integrated with the nature. That's what we have to see, and I hope that you all will agree that sustainability is a destination and not a journey, and now you all have a roadmap to get there. We all know what to do, but we fail to do what we have to do. It won't be an easy journey, but if we know anything about the current state of the world, it is imperative that standing still is no longer an option. We cannot stand still. We have to look at nature. We have to be spiritualistic. We have to be thankful to the nature. We have to worship nature. I thank Brahma Kumari's movement. It is a living example of how to have harmony among nature and people and organisms. I respect and salute this organization. I thank them for having given me the opportunity to stand before you and share a few thoughts about sustaining the environment with a new approach. That's what I would like to say. Thank you very much. May God bless you all.
Thank you very much, brother. So you have shared with us how to sustain our environment, ensuring there is no waste. So jo hum produce karte hain, jo cheez tayar karte hain, usme dekhna hai ki 95% is going waste. So let us all adhere to the value life cycle assessment and see how much the product can sustain without more of waste. So what we can learn from nature, hum prakriti nature se kya sikhte hain, kyunki ye jab hum waste management kehte hain to 95% is going waste. So hamare jo value system hai, so with the degradation of the nature, our value system also has degraded. So let us adhere to the biospheric rules and see that there is more of renewable energy and sustain this environment that we hold on to and come back to that nature, that system where everything is to the peak, everything is more positive, everything is more elevated, and let us create more value-based society through these emitting more of waste management and rather than creating more waste and less of production. So now I request Sister Vanita, who has surrendered her life for more than 25 years from Gamdevi Center. तो बहुत समय से हम आवास में थे तो अभी हम आवास से दूर हम देखे कि साइलेंस में हम क्या अनुभव कर सकते हैं, साइलेंस में हम कैसे अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं और साइलेंस में हम कितना ये पोल्यूटेड वर्ल्ड पोल्यूटेड नेचर को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो सिस्टर वनीता जो स्पार्क कोर ग्रुप मेंबर भी हैं और बहुत समय से हमारे जो चेयरपर्सन रमेश भाई जी हैं तो उनके अंग संग्रह हैं और उनसे बहुत कुछ सीखा है और बहुत कुछ कंट्रीब्यूट भी किए हैं स्पार्क विंग के लिए। तो हम अभी रिक्वेस्ट करेंगे सिस्टर वनीता जी से तो हम सबको इस साइलेंस दुनिया में ले जाएं।
ओम शांति। शांतिवन के इस बेहद आनंदमय और शांति के परिसर में आप सभी यहाँ पर पहुंचे हैं और 3 दिन से बहुत सुंदर अनुभवों के सत्र आप सुन भी रहे हैं। इन अनुभवों के सत्रों को सुनते हुए आप सभी बहुत भरपूर तो हुए ही हैं, राजयोग सत्र भी आप सुन रहे हैं, मेडिटेशन भी बहुत अच्छी तरह से आपका हो रहा है। हम आज रिसर्च के हिसाब से जब कहते हैं तो भीतरी रिसर्च, अपने अंदर की जो मूल्यों की धारणाएं हैं उनको कैसे संजोया जाए और यही श्रेष्ठ हमारे पास जो पूंजी है इसी को भरपूर करते हुए यहां से हमें लौटना भी है। कुछ बात आप सबके आगे रखना चाहूंगी। पहले बॉम्बे लाइफ तो बहुत बिजी लाइफ होती है, काफी वैसे भी और कंट्रीज में होती ही है, लेकिन जहां पर ट्रेन की यातायात का स्वरूप देखा जाता है तो काफी भीड़ होती है, लोगों की आपा भी उस समय पर खो जाती है। ऐसा ही एक संघर्ष का उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी। 3 मित्र अपने रिजर्वेशन टिकट्स लेकर के दौड़ रहे थे, कहां ट्रेन छूट न जाए, काफी लेट हो चुका था उनको। भीड़ को न देखते हुए सिर्फ दौड़ना ही उनका एक लक्ष्य था और अपने मंजिल पर अपने सीट पर जाकर बैठना था। काफी तेजी से दौड़ रहे थे, भीड़ में एक बच्ची फूलों का टोकरा लेकर चल रही थी, दिखाई नहीं दे रहा था उनको, अंधे थे। लेकिन इनको जब दौड़ रहे थे तो उस बीच उसको बहुत जोर से धक्का लगता, सारे फूल उसके बिखर जाते, लेकिन ये तीनों ही पीछे मुड़कर भी नहीं देखते कि उस बच्ची का क्या हल हुआ होगा। सिर्फ एक ही लक्ष्य था उनका कि हमें अपने रिजर्वेशन टिकट्स को खोना नहीं है और ट्रेन पर पहुंचना है। जब जाते हैं सीट पर बैठते हैं तो तीनों ही आपस में बात करना शुरू करते कि हाँ, हमसे तो बहुत बड़ी भूल तो हुई है, उस बच्ची को हमने देखा तक नहीं पीछे मुड़कर। उसमें से एक तो कहने लगता, जो भी हो मुझे ऐसा लगता है हमें वापस जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। दो जो होते हैं वो कहते हैं, अब मंजिल पर पहुंच गए और अब ये सोचते हो कि अभी हम जाएं, आपको जाना है तो आप जाओ, हम तो नहीं आएंगे। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही रहम की भावना अंदर जागृत हो जाती है, वो उस ट्रेन से उतर जाता है और उस बच्ची के पास पहुंचता है जहां वो फूलों को टटोल रही है, जहां के फूल सारे ही लोगों की भीड़ भाड़ से बिल्कुल गंदे, जो कि लेने लायक भी नहीं है, उठाने लायक भी नहीं है, लेकिन वो उन्हीं फूलों को उठा रही है। जब देखा गया कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, इस तरह से वो चल रही है, वो मदद करता है उसको, उसको जो भी खर्चा उसका फूलों का होता उसको देता है और उसको वहां से जिस रास्ते पर उसको जाना वहां छोड़ता है। उस बच्ची के दिल से उस समय अंदर से एक आवाज निकलती है और वो ये कहती है कि क्या आप भगवान हैं? आप सोचिए, एक इंसान को उसकी इंसानियत का, एक मानवता का क्या स्वरूप मिला उसको, एक रहम का, एक मर्सी का, करुणा का, जो दया का सागर बनकर के वो सिर्फ आ चुका, मदद रूप बना, तो उसको टाइटल कौन सा मिला कि क्या आप भगवान हैं? मैं भगवान को देख तो नहीं सकती, लेकिन आपके इस कार्य से ऐसा लगता शायद आप भगवान हो। उसने ये कहा, मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो भगवान के जो गुण हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज है, वो कम से कम हम में होनी चाहिए। आज उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, शायद इसलिए मैं आपकी मदद में यहां पर पहुंचा हूं। अगर यह इंसानियत का भाव हम सब में आ जाए, है तो सही सभी में, लेकिन उसको जागृत करना, उजागर रखना, यह हमारे हाथ में है। आइए इसी मानवता को लेकर अगर हम सभी उस परमात्मा की संतान है ये समझते हैं, तो हम में भी वो पावर्स, वो गुण जो निहित है, उनको हमें सिर्फ कार्यरत करना है, जीवन में लाना है। लाते तो है हजारों, लेकिन गाथाएं या आत्मबोध उन्हीं के बनते हैं जो उसको जीवन में निरंतर रखते हैं। तो चलिए उस गुणों के स्रोत, जो परम स्रोत है, शक्ति है, उस परम परमात्म पिता के साथ अगर हम अपने मन और बुद्धि को जोड़ दें, तो वही गुण और शक्तियों से हम अपने आप को भरपूर अनुभव कर सकते हैं और जहां पर ये खालीपन है उसको हम भरपूर कर सकते। जहां भी आप बैठे हैं वहां पर अलर्ट होकर के बैठे और अपने मन और बुद्धि की तार को यहां के वातावरण से भी हल्का कर दें। सभी बातों को समेटते हुए अंतर जगत की यात्रा पर अपने आप को ले चलिए। इस शरीर के अंदर भ्रुकुटि के मध्य स्वयं को एक चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करें। आप स्वयं इस शरीर के मालिक, कंट्रोलर, एक चेतन शक्ति, दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा है। अपने इस प्रकाश स्वरूप को अनुभव कीजिए। आप बहुत शक्तिशाली हैं। असंभव को भी संभव करने वाली चेतना, आप रियल साइंटिस्ट हैं। बहुत शांति है मुझ में। अपनी शांति के वाइब्रेशंस चारों ओर फैलाइए, जैसे सूर्य से रोशनी चारों ओर फैलती है, ऐसे मुझ मस्तक मणि से भी चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। आवाज की दुनिया से दूर चांद तारागण से भी पार उस अपनी दुनिया में जो अपना घर है, आत्माओं का लोक, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, चलिए हल्के होकर प्रकाश से भी तेज गति से मैं आत्मा उड़ती जा रही हूं। मन बुद्धि की ये उड़ान एक प्रकाश बिंदु अपने स्वयं प्रकाशित घर में, जहां सुनहरा लाल प्रकाश फैला हुआ है, चारों ओर गोल्डन रेड प्रकाश, इस सोल वर्ल्ड में अनेक बणियां मुझ जैसे चमक रही है। कितने स्टार्स हैं यहां, आहा, ये मणियों का आघात है। कितनी शांति है यहां, शांति, शांति के पिता सागर शिव परमात्मा, परम ज्योति, सर्व शक्तियों के स्रोत महाज्योति, सर्व गुणों के भंडारी, हम सभी के सदगति दाता, सर्व गुणों में सिंधु के समान परमात्मा, उस परम ज्योति से उस ज्योति का ये मिलन कितना न सुखद है। जन्म जन्म की प्यासी आत्मा इस मिलन में, अनेक जन्मों की प्यास बुझ रही है, इस परमात्मा मिलन में ऐसे खो जाएं जैसे सागर में बूंद समा जाते, समा जाइए उस परमात्मा प्यार में, परमात्मा किरणें मुझ आत्मा बिंदु पर फाउंटेन की तरह उतर कर आ रही है, और मैं आत्मा गुणों से और शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूं। कितना नानुका सुहावना ये मिलन है। शांति से, प्रेम से, आनंद से, पवित्रता से भरपूर होकर पुनः धीरे धीरे अपने मन और बुद्धि को इस आकारी आवाज की दुनिया में, अपने शरीर के भीतर भ्रुकुटी के मध्य स्वयं को एक चमकता हुआ डायमंड अनुभव करें। मुझ डायमंड से सप्त गुणों का प्रवाह चारों ओर फैल रहा है, जैसे प्रिज्म से सप्त रंग चारों ओर फैलते, ऐसे अपने में अनुभव कीजिए कि मुझ आत्मा से चारों ओर ये सप्त गुणों का प्रवाह तरंगे चारों ओर फैल रही है। परमात्मा की लाइट और माइट मुझ डायमंड पर उतर उतर कर आती और मुझसे वो सप्त गुणों के रूप में चारों ओर फैलते। मैं बहुत ही शांत, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खुशनुमा पवित्रता से संपन्न आत्मा
बहन। तो इस सत्र को संपन्न करने से पहले मैं अनुरोध करती हूँ शशि बहन से, एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, हमारे सब स्पीकर्स को मोमेंटो से सम्मान करें। Thank you. Om Shanti.